ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। महाभारत में श्री कृष्ण ये चार दिन के कथा का विषय होगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण, चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्ण, ये तो स्पष्ट है। वैसे महाभारत में भी श्री कृष्ण की उपस्थिति, उनके महात्म्य का वर्णन ये भी स्पष्ट ही है, परंतु अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। महाभारत के सिद्धांतों को कुछ और ही समझ लेते हैं। महाभारत के बारे में किसने नहीं सुना है, और इतनी गलत धारणाएं प्रचलित हैं महाभारत के संबंध में, और विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, इसलिए इनका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इसलिए हमने ये विषय चुना। हम कृष्ण भक्तों के लिए महाभारत की लीलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो महाभारत की लीलाओं में और श्रीमद् भागवत की लीलाओं में गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों में ही कृष्ण भक्तों का और श्री कृष्ण का भी वर्णन है। इसलिए श्रीमद् भागवत के भक्तों के लिए महाभारत को भी ठीक ठाक समझना, महाभारत के प्रति सही दृष्टिकोण रखना और श्री कृष्ण की भूमिका को महाभारत के भीतर अच्छी तरह से समझ लेना ये आवश्यक है। वैसे कई बार जब किसी के घर में पार्थसारथी, अर्जुन और पार्थसारथी की तस्वीर होती है, तो वो शिकायत करते हैं कि दूसरे लोग आके उनसे कहते हैं कि आप इस तस्वीर को मत रखिए, क्योंकि आपके घर में भी ऐसे युद्ध हो जाएगा जैसे कुरुक्षेत्र में हुआ था। और यकीन कीजिए, ये तो बहुत प्रचलित धारणा है। ऐसे नहीं कि बस एक दो लोग, जगह जगह जहां भी हम जाते हैं लोग अक्सर ऐसे कहा करते हैं। परंतु जहां श्री कृष्ण हैं और जहां श्री कृष्ण के भक्त हैं, वहां कहीं अमंगल हो सकता है? संभव नहीं है। जैसा कि भगवद गीता में ही बताया गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीतिर मतिर मम। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, मेरा ये मत है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण उपस्थित रहेंगे और जहां पर उनके शुद्ध भक्त गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन उपस्थित रहेंगे, वहां पर नीति, विजय, ऐश्वर्य सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो फिर यदि किसी ने पार्थ और पार्थ सारथी की तस्वीर अपने घर में लगाई, तो अशुभ भला कैसे हो सकता है? और यदि कोई विध्वंस होना ही है तो वो भी भलाई के लिए होगा। या तो फिर किसी के घर में दुर्योधन जैसे मनोवृत्ति लोगों की है तो फिर ठीक है। फिर ऐसे लोग वैसे पार्थ और पार्थ सारथी की तस्वीर लगाएंगे ही क्यों? तो खैर, ऐसे बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। और जहां तक कि महाभारत का प्रश्न है, महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के अतिरिक्त और बहुत सी बातें हैं पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। हालांकि हम मोबाइल फोन तो सुनना नहीं चाहते हैं, केवल महाभारत और श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहते हैं, परंतु युद्ध के अतिरिक्त और बहुत कुछ है महाभारत में। और वैसे जो युद्ध हुआ भी तो उसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है, बहुत गुही बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये विशेष योजना थी, भगवान जब प्रकट होते हैं तो विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकट होते हैं। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध की रचना करने में भी भगवान की विशेष योजना थी। तो महाभारत के बारे में किसने नहीं सुना है, हम सब तो बचपन से सुनते आए हैं, बल्कि पहले तो पाठशालाओं में भी अनिवार्य होता था, शिक्षा क्रम में महाभारत रामायण की कहानियां या कथाएं पढ़ाई जाती थीं। परंतु आजकल ऐसे वातावरण हो गया है कि निरपेक्षता के कारण वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम अभी भागवत धर्म के बारे में कुछ नहीं सिखा सकते। पहले जहां गांव-गांव में महाभारत रामायण और भागवत की कथाएं हुआ करती थीं, आजकल ऐसे अंदर के गांव में भी टेलीविजन पहुंच गया है, तो फिर वहां पे भी ऐसी कथाएं आजकल बहुत कम ही होती हैं। तो वैसे हमारे संस्कृति में ये दो बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं, महाभारत और रामायण। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार एक महारानी थी, तो उनके दरबार में एक कवि आए जिनका नाम था कालिदास। कालिदास का नाम तो आप सबने अवश्य सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और जब मंत्री ने आके महारानी से कहा कि कालिदास जी आए हैं जो बहुत बड़े कवि हैं, तो उस महारानी ने उत्तर दिया कि मैं तो केवल दो कवियों को जानती हूं, एक है वाल्मीकि और दूसरे हैं व्यासदेव, इसके अतिरिक्त और कौन से कवि हैं। कहने का मतलब है कि भगवान से संबंधित कोई कविता हो, कोई लेख हो, उपन्यास हो, नाटक हो, शास्त्र हो, तब वो मूल्यवान होता है। यदि भगवान का कोई संबंध न हो उस ग्रंथ का या उस रचना का, तो उसका मूल्य शून्य के बराबर है। इसलिए महाभारत में श्री कृष्ण को समझना, श्री कृष्ण की भूमिका को जान लेना ये अति आवश्यक है, अन्यथा महाभारत भी ऐसे अनेक कथाओं की तरह, अनेक ग्रंथों की तरह हो जाएगा, जिसमें के तरह तरह के राजाओं के का वर्णन है, तरह तरह के युद्धों का वर्णन है, राजनीति अर्थशास्त्र इत्यादि का वर्णन है। ऐसे कितने सारे शास्त्र हैं जिसमें इन सारे विषयों का वर्णन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो महाभारत में यदि हम केवल इन्हीं चीजों को ढूंढेंगे और इन्हीं चीजों के बारे में सुनना पसंद करेंगे, तो फिर महाभारत का मूल्य अधिक नहीं होगा। इसलिए जब हम श्री कृष्ण का संबंध देखते हैं महाभारत में, तब महाभारत का मूल्य बढ़ जाता है, तब हम समझ लेते हैं कि यह वास्तव में एक दिव्य ग्रंथ है। वैसे हमारे दैनिक जीवन में भी हम महाभारत के कई महत्वपूर्ण श्लोकों का उच्चारण करते हैं, एक तो कम से कम दिन में तीन बार करते हैं, प्रतिदिन कम से कम तीन बार करते हैं। कौन सा श्लोक है वो? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। कि जिसके मन में, जिसने वास्तव में कोई बहुत कम भक्ति की सुकृति या पुण्य प्राप्त किए हैं, ऐसे व्यक्ति के मन में महाप्रसाद के प्रति, गोविंद या भगवान श्री कृष्ण के प्रति, नाम ब्रह्मणि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम के प्रति, और वैष्णव भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है महाभारत का, जो हम प्रतिदिन कहते हैं। वैसे और भी कई श्लोक हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने उच्चारण किया था और चैतन्य चरितामृत में भी पाए जाते हैं। ऐसे श्लोक प्रभुपाद जी भी बार बार किया करते थे, अनेक महाभारत के श्लोकों का उच्चारण। एक उदाहरण चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग है जहां के गोपीनाथ आचार्य जो कि चैतन्य महाप्रभु के एक निकट के पार्षद थे, वो सार्वभौम भट्टाचार्य को उपदेश देते हैं। जबकि सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त अभी तक नहीं बने थे, केवल एक शुष्क ज्ञानी थे। वो अद्वैतवाद में रुचि रखते थे। तो फिर बातों बातों में गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें कहा कि आप ये नहीं जानते हो, आपने तो इधर उधर से प्रमाण रखे हैं, कोई इधर से श्लोक कहा, उधर से कुछ श्लोक कहा, परंतु कलयुग के लिए जो सबसे दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत और महाभारत, इनका तो उल्लेख आपने किया ही नहीं। और फिर श्रीमद् भागवत से उन्होंने एक श्लोक कही जिससे साबित होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं श्री कृष्ण हैं, इस कलयुग के अवतार हैं। और साथ साथ में उन्होंने महाभारत का भी एक श्लोक कहा जिसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। वास्तव में ये तो विष्णु सहस्र नाम में आता है, आपको पता होगा ये कौन सा श्लोक है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगदी संन्यास कृत शांतो निष्ठा शांति परायण। तो विष्णु सहस्र नाम में वास्तव में ये चैतन्य महाप्रभु को संकेत करता है। तो खैर, गोपीनाथ आचार्य ने ऐसे महाभारत के श्लोकों को भी सामने रखा। तो हम कृष्ण भक्तों के लिए ये महाभारत के जो उपदेश हैं, श्लोक हैं, कथाएं हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ साथ में महाभारत का और एक श्लोक है जिसका उच्चारण प्रभुपाद जी बार बार किया करते थे। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना न सावृषीर यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गतः स पंथा। कि केवल तर्क के द्वारा या विभिन्न शास्त्रों के पढ़ने के द्वारा हम सही धर्म या सत्य की स्थापना नहीं कर सकते हैं। सही सत्य और धर्म की स्थापना ऐसे तथाकथित मुनियों के बीच में नहीं हो सकती है। धर्म के जो गुह्य तत्व होते हैं वो भगवान के शुद्ध भक्तों के हृदय में होते हैं, और इसलिए ऐसे शुद्ध भक्तों के, जिनको महाजन कहते हैं, पद चिन्हों में हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। महाजनो येन गतः स पंथा। तो ऐसे कई श्लोक हैं जिनका उच्चारण श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे। इसके पहले कि हम श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करें, उनकी क्या भूमिका थी महाभारत में, और विशेष करके आज हम लीलाओं की चर्चा नहीं करेंगे, लीलाओं की चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे, परंतु ये महत्वपूर्ण है कि एक पृष्ठभूमि के रूप में महाभारत के बारे में कोई जानकारी होना आवश्यक है। ये किस तरह का ग्रंथ है, इसका महत्व क्या है, इसकी रचना कैसे हुई थी, किन के लिए इसकी रचना हुई थी, और उद्देश्य क्या है महाभारत का इत्यादि। वैसे भगवद गीता में तो 700 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास देव जी के महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में अनेक विषयों की चर्चा है। महाभारत, इस नाम का तात्पर्य समझना भी आवश्यक है। जैसे हम अभी थोड़े दिन पहले बंबई में थे, तो बंबई में, बंबई शहर है और फिर बृहन बंबई, मुंबई और बृहन मुंबई, महामुंबई, मतलब जब शहर बढ़ गया तो शहर के बाहर का इलाका जो है उसे भी बृहन मुंबई कहते हैं, महामुंबई। तो ठीक उसी तरह से भारत और महाभारत, वैसे पूर्ण विश्व ही पहले भारतवर्ष कहलाता था। इसका और एक नाम था इलावृत वर्ष, ऐसे भागवत में वर्णन है। और यहां भारत भूमि से वैदिक सभ्यता सारे विश्व भर में फैल गई। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में समझाते हैं कि पहले केवल एक ही सभ्यता, एक ही संस्कृति हुआ करती थी और वह वैदिक सभ्यता। और जैसे जैसे विभिन्न कारणों से लोग यहां भारतवर्ष से विश्व भर में फैल गए, इधर उधर बस गए, तो धीरे धीरे से संस्कृत भाषा से दूर होते गए, इस अपने मूल वैदिक सभ्यता से दूर होते गए और नई नई भाषाएं उत्पन्न हो गई, नई नई सभ्यताएं उत्पन्न हो गई। और आज इतना परिवर्तन हो चुका है इतने हजारों वर्षों के बाद कि लोग मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि वैसे वैदिक सभ्यता ही मूल सभ्यता है, और नहीं वो मानने के लिए तैयार है कि संस्कृत भाषा ही समस्त विश्व की भाषाओं की जननी है। खैर, प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले संपूर्ण विश्व एक राजा के अधीन हुआ करता था, जो विश्व सम्राट हुआ करते थे, जैसे कि महाराज युधिष्ठिर, राजा परीक्षित इत्यादि, और इनके नीचे कई छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जो इस विश्व सम्राट के अधीन थे। विश्व सम्राट को वो कर आदि प्रदान किया करते थे। तो ऐसे सारे विश्व भर में तरह तरह के लोग रहा करते थे और इन सब की कथाओं का वर्णन यहां श्रीमद् भागवत में है, क्षमा कीजिए, महाभारत में है। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि किसी को यदि इतिहास पढ़ना है तो महाभारत पढ़ना चाहिए। विशेष करके जब वो गुरुकुल की चर्चा करते थे कि गुरुकुल में बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, गणित कितना पढ़ाना चाहिए, भाषाएं कौन सी पढ़ानी चाहिए, फिर इतिहास की बात जब आई तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि गुरुकुल में हमारे बच्चों को महाभारत पढ़ानी चाहिए ताकि वो जान लें कि पृथ्वी का इतिहास क्या है। हजारों वर्ष पहले के इतिहास की बात है। आजकल के जो इतिहासकार होते हैं वो अधिक से अधिक 4-5 हजार वर्षों की बात कुछ कह सकते हैं, वो भी इतनी निश्चितता से नहीं कह सकते हैं, परंतु महाभारत और अन्य वैदिक ग्रंथों में ऐसे घटनाओं का उल्लेख है और वर्णन है जो कि 5000 वर्ष पहले की बात तो दूर है, लाखों लाखों वर्ष पहले की घटनाओं का वर्णन भी पाया जाता है। भले वो कभी कभी क्रमानुसार वर्णित न हो, फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि न केवल पृथ्वी लोक पे घटित जो घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनका वर्णन महाभारत और अन्य शास्त्रों में पाया जाता है, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जितने भी ग्रह और लोक हैं उनकी घटनाओं का भी वर्णन यहां पाया जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि संभव है कि कई लोग विश्वास नहीं करेंगे, सोचेंगे कि ये सब दंत कथा है, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि किसी दूसरे लोक की कथा का वर्णन यहां हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक व्यक्ति का भोजन दूसरे व्यक्ति का विष है। ये अंग्रेजी में कहावत है कि वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। तो खैर, भले अन्यों के लिए ये विष हो या मिथ्या हो, परंतु हम कृष्ण भक्तों के लिए ये मिथ्या तो हरगिज नहीं है। श्रीमद् भागवत इतिहास है, ऐतिहासिक घटनाओं का ही वर्णन यहां पाया जाता है, और बल्कि संपूर्ण वैदिक साहित्य में जितने भी उपदेश हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में, यहां तक कि थोड़ी बहुत भक्ति के बारे में भी अवश्य हैं, वो सारे के सारे उपदेश महाभारत में पाए जाते हैं। इसलिए व्यास देव जी ने बहुत प्रसिद्ध श्लोक की रचना की है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यद इहास्ति तदन्यत्र यन नेहास्ति न त्वत्पचित। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार विषय हैं जो पुरुषार्थ माने जाते हैं मनुष्य समाज के लिए। पुरुषार्थ अर्थात जो जीवन में प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हैं, और अधिकतर लोग जो वैदिक सभ्यता में भी होते हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे होते हैं। धर्म इस संबंध में है कर्मकांड, जिसके द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ अर्थात धन। धन की प्राप्ति चाहिए लोगों को किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, भोग के लिए। तो धर्म अर्थ काम अधिकतर लोग इसी तक सीमित रहते हैं। विरला ही इधर उधर कोई व्यक्ति मिल जाता है जो सोचता है कि नहीं, भोग के परे भी मुझे जाना चाहिए। ये जीवन का उद्देश्य केवल अर्थ कमाना और भोग करना नहीं है, जो संसार से मुक्त होने की भी कभी विचार मुझे करने चाहिए, तब वो मोक्ष की अवस्था के बारे में सोचने लगता है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि एक पंचम पुरुषार्थ है, एक पांचवा ध्येय है जीवन का, जो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है, बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि वो एकमात्र ध्येय है, और वो है शुद्ध कृष्ण प्रेम। तो खैर, कहने का तात्पर्य इस समय ये है कि महाभारत में इन सब विषयों के बारे में, विशेष करके धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो व्यासदेव जी कहते हैं, यद इहास्ति तद अन्यत्र, जो यहां इस शास्त्र में अर्थात महाभारत में पाया जाता है वो अन्य शास्त्रों में भी आप पा सकते हैं, परंतु यद नेहास्ति, यहां पे जो नहीं पाया जाता अर्थात महाभारत में जो नहीं है, न त्वत् क्वचित, तो वो किसी भी दूसरे शास्त्र में हम नहीं पाएंगे। तो देखिए कितनी गहरी बात व्यासदेव जी कह रहे हैं कि महाभारत में जो जिन चीजों को हम पाएंगे, हो सकता है अन्य जगह भी पाएं, लेकिन महाभारत में जिस विषय का वर्णन नहीं है उसे हम अन्य किसी भी स्थान में या शास्त्र में नहीं पाएंगे। तो ये है महाभारत, इतना विशाल है विषय के संदर्भ में, इसकी पहुंच इतनी विशाल है कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिसकी चर्चा महाभारत में नहीं होती है, और यदि नहीं होती है तो इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है हमें। वैसे प्रभुपाद जी काफी अपने तात्पर्यों में महाभारत के युद्ध के बारे में बताते हैं कि वास्तव में महाभारत की जो कथा है वो दो राजवंशों के बारे में है, राज परिवारों के बारे में है, और कोई समस्या हुई, दोनों में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा भीषण युद्ध कि शायद इतिहास में ऐसे कहीं पहले न हुआ हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि विश्व के इतिहास में सबसे जो दो बड़े युद्ध हुए हैं वो है, एक तो रामायण का युद्ध जिसमें कि श्री रामचंद्र ने रावण को परास्त किया, और दूसरा है कुरुक्षेत्र का युद्ध जिसमें कि पांडवों ने कौरवों को हरा दिया। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दोनों ही युद्धों में वैष्णवों ने ही अधिकतर युद्ध किया, सबसे सामने वैष्णव ही थे। रामायण के युद्ध में सबसे सामने थे हनुमान जी, और महाभारत के युद्ध में सबसे सामने थे अर्जुन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी वैष्णवों को भी युद्ध करना पड़ता है, लेकिन आपस में नहीं, आपस में कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आपस में प्रेम से ही रहना चाहिए, भक्तिभाव से रहना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर ऐसे करने के लिए भी तैयार होना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। तो महाभारत और रामायण के युद्ध के सामने जो पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ पिछले सदी में, वो तो बहुत छोटा युद्ध मान सकते हैं। इसमें थोड़े बहुत हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों की हत्या हुई होगी, परंतु महाभारत और रामायण के युद्धों में तो करोड़ों की संख्या में लोगों की हत्या हो गई। और वैसे सबका भला हुआ, जिनकी हत्या हुई उनका भी भला हुआ, जिनकी हत्या नहीं हुई उनको भी लाभ हुआ, क्योंकि इन युद्धों का संबंध भगवान से था। इसलिए तो वैसे तो युद्ध इतिहास में कई हुए हैं, अब हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे, परंतु इन दो युद्धों की विशेषता ये है कि इन दोनों में स्वयं भगवान उपस्थित थे और उनके भक्त भी उपस्थित थे, इसलिए इनका महत्व हमारे लिए बहुत ही विशेष है। कई इतिहासकार हैं, दार्शनिक हैं, जो कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं। कोई कहते हैं ठीक है हुआ होगा, लेकिन हमारे अनुमान से इस तारीख को हुआ होगा। कोई कहते हैं उस तारीख को हुआ होगा। ऐसे अपने मानसिक चिंतन के द्वारा तरह तरह के वो मत सामने रखते हैं, परंतु महाभारत के बारे में जो सही जानकारी है वो महाभारत में ही पाया जा सकता है। महाभारत में ही स्पष्ट रूप से वर्णन है कि कलयुग के प्रारंभ होने के थोड़े समय पहले ही ये घटनाएं हुई थीं। इसका मतलब है कि 5000 वर्षों से अधिक अब बीत गए समय की अवधि हो चुकी है। और वैसे आजकल कई लोग हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर गणना करके ये साबित कर रहे हैं कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था, क्योंकि महाभारत में ऐसे अनेक वर्णन है नक्षत्रों के, ग्रहों के, और जब हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे ग्रह इस नक्षत्र में इस तरह से थे, तो फिर ये तो केवल इतिहास में ऐसे इन समय में हुआ था, इस समय हुआ था, इस समय हुआ था। तो इस तरह से वो साबित करते हैं। कई बुद्धिमान ज्योतिष हैं जिनकी भक्ति भावना थोड़ी बहुत है, तो भी वो साबित कर रहे हैं। खैर, ये तो अच्छी बात है आजकल के अश्रद्धालु लोगों को समझाने के लिए, परंतु हम कृष्ण भक्तों के लिए तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए इतना पर्याप्त है कि महाभारत में जो कहा है वही सही है, इसे हम स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि महाभारत या भगवद गीता के बातों को हमें जैसे है वैसे स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी भी अपने भगवद गीता के तात्पर्य में बताते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के तर्क करते हैं कि भगवद गीता को या कुरुक्षेत्र के युद्ध को सीधे नहीं लेना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए कि चलो ये इंद्रियां हैं, ये शरीर है, ऐसे उपमाओं के दृष्टि से, तुलनाओं के दृष्टि से वो समझने का प्रयास करते हैं। परंतु जब तक हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आके महाभारत और भगवद गीता आदि को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हम भ्रमित ही रहेंगे सही निष्कर्ष के बारे में। महाभारत की रचना, जैसे कि हम सब जानते हैं, श्रील व्यास देव जी ने की थी। पहले तो एक ही वेद हुआ करता था, यजुर्वेद। द्वापर युग के अंत में व्यास देव जी ने देखा कि अब लोगों की दशा आने वाले कलयुग में बहुत बुरी होने वाली है और वेद को समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है, और इतना ही नहीं, अब लिखित रूप में शास्त्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, क्योंकि कलयुग के लोगों के की स्मृति शक्ति आदि बहुत कमजोर हो जाएगी, इसलिए केवल सुनने से वो याद नहीं रख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने फिर सोचा कि वेदों का संपादन किया जाए। यजुर्वेद का भाग उन्होंने चार वेदों में कर दिया। चार वेदों के साथ साथ उन्होंने पुराणों की रचना की, अन्य शास्त्रों की रचना की। उन्होंने देखा कि महाभारत की रचना भी आवश्यक है। बाद में श्रीमद् भागवत की रचना की। आधुनिक टीकाकार जो हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करने के कारण सही निष्कर्ष को नहीं समझ सकते हैं, उनका विचार ऐसे है कि महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना केवल गुफों में रहने वाले व्यक्तियों ने की। उनका कहने का तात्पर्य है कि जो असभ्य लोग हैं, आदिवासी प्रकार के लोग हैं, जो गुफों में रहा करते थे, उन्होंने कुछ लिखा होगा, कुछ कहा होगा। और विशेष करके जब अंग्रेज यहां आए थे तो इस धारणा का प्रचार वो खूब कर रहे थे। हाँ, वैसे में गुफों में तो रहते थे, आश्रमों में भी रहते थे, लेकिन असभ्य नहीं थे। और उनके जैसे व्यक्ति जो इतने महान संत थे, जैसे व्यासदेव, जिनका मन इतना शुद्ध था, इंद्रियां वश में थीं, जिनकी बुद्धि और स्मृति शक्ति इतनी तीव्र थी, जिनका चरित्र इतना शुद्ध था, ऐसे बड़े बड़े ऋषि और संत जो हैं, इन्होंने रचना की है। अवश्य में गुफों में रहे होंगे वो, परंतु इस दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए जैसे आधुनिक टीकाकार सोचते हैं। थोड़े ही दिन पहले हमें ये सौभाग्य मिला कि हम बद्रीनाथ आदि जाकर आए, तो वहां बद्रिकाश्रम में बद्री विशाल मंदिर से ऊपर चढ़ना पड़ता है। वहां पे व्यास देव जी के गुफे का स्थान है, गुफा भी है, कहते हैं कि उसी गुफे में रहा करते थे। खैर, उसी गुफे में हो या किसी दूसरे गुफे में हो, लेकिन उसी स्थान में रहा करते थे, उनके आश्रम में। और पास में गणेश जी की गुफा भी है। तो ऐसे बताया जाता है कि जब व्यास देव जी महाभारत की रचना करना चाहते थे तो उन्होंने सोचा कि मुझे कोई ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कि इस ग्रंथ को लिखेंगे। मैं तो कहूंगा, लेकिन लिखने वाला भी तो कोई चाहिए। तो गणेश जी तैयार हुए और गणेश जी ने एक शर्त रखी व्यासदेव जी के सामने कि शर्त यह है कि मैं लिखूंगा सही, परंतु आपको रुकना नहीं चाहिए। यदि आप रुक जाएंगे बीच में तो मैं भी लिखना बंद कर दूंगा, लिखूंगा नहीं इसके आगे। तो व्यासदेव जी ने सोचा कि ये तो विडंबना है, क्या किया जाए अभी। ठीक है, उन्होंने भी एक शर्त रख लिया गणेश जी से कि आपका शर्त मुझे मंजूर है, परंतु मेरा भी शर्त है कि आप प्रत्येक श्लोक को पूरी तरह से समझने के बाद ही लिखेंगे, तब तक नहीं लिखेंगे। तो जब भी व्यास देव जी को आगे सोचने की आवश्यकता पड़ जाती तो ऐसा एक श्लोक कह देते जिसके बारे में गणेश जी सोचते बैठ जाते, और फिर थोड़ा समय मिल जाता व्यास देव जी को, फिर वो थोड़ा कुछ विचार करके आगे के श्लोक है जो उनकी रचना कर देते। तो खैर, व्यास देव जी और गणेश जी के सहयोग से ये महाभारत की रचना तो हो ही गई बद्रिकाश्रम में। और आगे चल के जब युद्ध चल रहा था तो व्यास देव जी की कृपा से उनके शिष्य संजय, जो कि धृतराष्ट्र के मंत्री थे, उनको विशेष दृष्टि मिल गई, जिसके द्वारा युद्ध भूमि में जो हो रहा था वो स्पष्ट रूप से देख पाए और धृतराष्ट्र को वर्णन कर पाए। तो आजकल तो कई ऐसे आधुनिक महाभारत लिखे जा रहे हैं जिसमें कि लेखकों की धारणाएं भिन्न भिन्न रहती हैं। वो अपने अपने महाभारतों को लिखते हैं, कोई अपने दृष्टिकोण से, कोई उसके दृष्टिकोण से। कोई कहते हैं कि कृष्ण थे ही नहीं, कोई कहते हैं कृष्ण केवल एक दंत कथा है, व्यक्ति है, ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। फिलहाल ही एक बहुत प्रसिद्ध महाभारत का प्रकाशन हुआ है, पिछले 6-8 महीनों में ही, या एक साल हो सकता है, और भारत में काफी बिक रहा है, ये विदेशों में भी बिक रहा है। और जो लेखक हैं वो तो भक्त नहीं है, वो तो शुष्क एक ज्ञानी है। बहुत बड़े कंपनी में कोई बड़े व्यक्ति रहे और उन्होंने सोचा कि मैं महाभारत को पढ़ लूं, पढ़ लिया और अपने मनमाने ढंग से अब कुछ टीका करना चाह रहे हैं, तो टीका बहुत बड़ा ग्रंथ लिख लिया। और उनका निष्कर्ष क्या था? निष्कर्ष ये था कि वास्तव में पांडव ही बुरे लोग थे। इतना सब पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष उनका निकला। कौरव तो थे ही, कौरवों में भी तो बहुत दुर्गुण थे, लेकिन पांडव भी कोई कम नहीं थे इसके बारे में। उनके अंदर भी बहुत सारे दुर्गुण थे। तो जैसे मन में आया लोग वैसे कहते हैं, अपने अपने महाभारतों की रचना करते हैं। इसलिए उस महारानी की बात याद रखनी चाहिए। केवल वाल्मीकि और व्यासदेव दो कवि हमारे लिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके चरण चिन्हों में चलने वाले जो भक्त हैं, हाँ, उनकी जो रचनाएं हैं उनको भी हम स्वीकार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी गोपाल भान नाम के एक व्यक्ति के बारे में अक्सर चुटकुले सुनाए करते थे। जैसे बीरबल रहे, अकबर के साथ बहुत बुद्धिमान थे, उसी तरह से ये गोपाल भान थे, बंगाल में रहा करते थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, परंतु वो मंत्री नहीं थे। केवल हास्य परिहास के लिए राजा उन्हें रखते थे वहां पे, क्योंकि वो इतने बुद्धिमान थे। तो राजा कृष्णचंद्र के राज्य में वो थे, और राज्यपाल एक कोई नवाब था, मुसलमान नवाब था। तो नवाब ने एक बार गोपाल भांस को बुलाया और कहा कि अरे गोपाल, मैंने आपके महाभारत नामक ग्रंथ के बारे में बहुत सुना है कि बहुत बड़ा ग्रंथ है और वो अच्छी रचना है और बहुत बड़े बड़े राजाओं का वर्णन उसमें है, तो मेरे बारे में भी एक महाभारत क्यों नहीं लिखते। तो गोपाल भाने का अवश्य लिखेंगे, केवल 1,00,000 रुपए मुझे देने होंगे आपको, तो मैं बड़े बड़े पंडितों को लगा देता हूं इस काम में। तो राजा नवाब ने कहा ठीक है, ये ले लो, 1,00,000 रुपए ले लो। तो फिर एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद गोपाल भां फिर से नवाब के पास आए कि हुजूर, हमें अभी और 10,000 रुपए चाहिए, आपका कार्य जो है प्रगति में है, चल रहा है, सारे पंडित जो है कार्य में लगे हुए हैं। तो नवाब ने कहा ठीक है ले लो। एक और हफ्ता बीत गया, फिर से गोपाल भां उनके पास आए, नवाब हुजूर अभी और 10,000 चाहिए। अच्छा, और चाहिए, ठीक है चलो ले लो, दे दिए। अगली बार थोड़े और समय के बाद आए, बात अच्छी तरह से प्रगति पर कार्य चल रहा है नवाब, अभी और थोड़े पैसे की आवश्यकता है। तो नवाब कहने लगे, भाई पैसे ही मांगते जा रहे हो, कह रहे हो कि अब होगा, कब होगा, लेकिन मेरा महाभारत तो मैं पढ़ना चाहता हूं, उसको देखना चाहता हूं, जल्दी करो। बस हजूर अभी हो जाएगा, बस और 10,000 रुपए चाहिए। तो और 10,000 रुपए ले लिए। ऐसे समय बीतता गया, बार बार पैसे लेने आते, तो एक बार नवाब हुसैन शाह नवाब जो थे, जो भी नाम था उनका, उनको गुस्सा आया, कहने लगे अब हम नहीं देंगे, अब हमें किताब देखनी है, इतने पैसे हमसे ले गए हो और किताब तो दिया नहीं। तो गोपाल भान ने उत्तर दिया, हुजूर देखिए ऐसा है कि सारी चीजें तैयार हैं, केवल एक जानकारी हमें चाहिए बस, वो जानकारी मिल जाएगी तो आपका महाभारत संपूर्ण हो जाएगा। तो कौन सी जानकारी है बताओ? ये बताइए कि आपके पत्नी के कितने पति हैं। तो नवाब ने पूछा क्या मतलब? हाँ हाँ, द्रौपदी देवी के 5 पति थे, और आप तो इतने बड़े नवाब हैं, विश्व सम्राट के समान हैं, आपके पत्नी की तो और बहुत सारे पतियां होंगी। तो नवाब को बड़ा गुस्सा आया कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे बात कर रहे हो, बंद कर दो, तो और 10,000 रुपए लगेंगे, ठीक है ले लो, छोड़ दो बात। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आजकल के जो महाभारत के रचयिता होते हैं, या तरह तरह के जो उपन्यास लिखते हैं आध्यात्मिक विषयों के संबंध में, वो ऐसे गोपाल भां और उस नवाब के बारे में जो संबंध था, जैसे प्रकाशित करते हैं ये लोग सारे किताबें, एक के बाद एक छापते रहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। महाभारत का तो सारा सार जो है उसको ही नष्ट कर देते हैं। तो महाभारत वास्तव में, यद्यपि इसमें तरह तरह की कहानियां हैं, कथाएं हैं, फिर भी ये केवल एक कहानियों का पुस्तक नहीं है, ये भी एक प्रस्थान है, ये भी एक आध्यात्मिक वैदिक तत्वों का भंडार है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि तीन प्रकार के प्रस्थान होते हैं, प्रस्थान त्रयी। एक को कहते हैं न्याय प्रस्थान, जैसे वेदांत सूत्र। दूसरा है श्रुति प्रस्थान, जैसे कि चार वेद, उपनिषद इत्यादि। और फिर है स्मृति प्रस्थान, जैसे कि पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि। तो ये महाभारत है, ये भी स्मृति प्रस्थान है, ये भी एक वैदिक ग्रंथ है। महाभारत को भी पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि वैदिक शास्त्रों में और पुराणों इतिहासों में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई अंतर है तो वो इतना ही है कि चार वेदों में मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है और उनके सामने ओंकार का उच्चारण करना पड़ता है, बस इतना ही है। इतिहासों में ऐसा नहीं है, अन्यथा और अंतर नहीं है, सार दोनों का एक ही है, उद्देश्य महाभारत का वही है। वेदों का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना, यह भी महाभारत का लक्ष्य है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए महाभारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान में, जबकि युद्ध प्रारंभ होने वाला है, बस अभी कहानी शिखर पर पहुंच गई है, तब भगवद गीता का संदेश आता है। तो व्यासदेव जी ने ऐसे कथा को बढ़ाया है, बढ़ाते 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 एक चट्टान पर ले गए हैं, फिर जी युद्ध प्रारंभ होने ही जा रहा है और इस समय महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, जो सार है महाभारत का, भगवद गीता, वो कहा जाता है। इस तरह से भगवद गीता, इसमें तो कितने गुह्य और महत्वपूर्ण तत्व हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। अब महाभारत की बात तो छोड़िए, भगवद गीता में भी इतना स्पष्ट बताया गया है कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, परंतु फिर भी लोग भगवद गीता को पढ़ने के बाद भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। वास्तव में महाभारत में कई आध्यात्मिक और भौतिक विषयों को पाया जाता है, दोनों का मिलन है। और इसलिए होता यह है कि लोग इन भौतिक विषयों में इतने उलझ जाते हैं कि आध्यात्मिक तत्वों को देखना भूल जाते हैं। वास्तव में महाभारत का उद्देश्य है भगवद गीता को समझना, यही सार है महाभारत का। महाभारत पढ़ने के बाद यदि कोई भगवद गीता के उपदेश को नहीं समझता है तो महाभारत पढ़ना उसके लिए अधिक लाभदायक नहीं होगा। थोड़ा लाभ तो हो ही जाएगा, परंतु अधिक आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि भगवद गीता ही महाभारत का सार है। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में लोग भौतिक विषयों में ज्यादा रुचि रखते हैं, जैसे कि राजनीति के विषय, अर्थव्यवस्था के विषय और पुरुष स्त्री के बीच में संबंध के विषय और तरह तरह के छल कपट के विषय, इन चीजों में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो जब आध्यात्मिक बातें कोई आती हैं तो बस पन्ने घुमा देते हैं, आगे की बात में चले जाते हैं, क्योंकि आजकल के लोग ऐसे होते हैं। इसलिए महाभारत की रचना ऐसे व्यासदेव जी ने की थी। महाभारत को वैसे गीतोपनिषद कहा जाता है, ये भी एक उपनिषद है, ये श्रुति है। तो अभी अभी हम सुन चुके हैं कि महाभारत एक स्मृति शास्त्र है और भगवद गीता महाभारत का भाग है। तो भगवद गीता स्मृति शास्त्र है, फिर यहां श्रुति शास्त्र कैसे कह सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं महाभारत को भी हमें श्रुति शास्त्र भी मानना चाहिए, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने भगवद गीता को कही है, इसलिए ये श्रुति शास्त्र है। तो भगवद गीता जो है ये दोनों स्मृति शास्त्र और श्रुति शास्त्र दोनों है। जैसे कि गीता महात्म्य में कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धा गोपाल नंदनः। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, तो पार्थ वत्स है, बछड़े हैं उस गाय रूपी भगवत गीता के, ये दूध है, उपनिषदों का सारे भगवत गीता के रूप में पाया जाता है। और अन्य जो सुधीर लोग होते हैं वो भी इस दूध का, दुग्धम गीतामृतम महत, इसका वो लाभ उठाते हैं। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनिःसृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारतामृत सर्वस्वम, ये महाभारत का सार है ये भगवत गीता। विष्णु वक्त्राद्विनिःसृतम, कि भगवान विष्णु के मुखारविंद से ये उत्पन्न हुआ है। गीता गंगोदकम पीत्वा, तो गीता का जो ज्ञान है ये भी गंगा जल के समान है जो कि हमें पुनर्जन्म के कष्टों से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि महाभारत की रचना विशेष करके व्यासदेव जी ने उन लोगों के लिए की थी जो कि प्रत्यक्ष रूप से वेदों को समझ नहीं पाने वाले थे, जिनकी बुद्धि, जिनकी समझ, जिनका ज्ञान, जिनकी क्षमता उतनी नहीं थी कि वो वेद शास्त्रों को समझ लें, आध्यात्मिक तत्वों के चर्चाओं को प्रत्यक्ष रूप से समझ लें, उनके लिए ऐसी रचना की गई थी। तो महाभारत में व्यास देव जी ने तरह तरह की कहानियां भर दी हैं ताकि ऐसे लोगों को आकर्षित हो जाए, क्योंकि आजकल विशेष करके कलयुग में और वैसे पुराने युगों में भी सबको कहानियां सुनना बड़ा अच्छा लगता है और लगता था भी उस समय। तो कहानियों के बीच में उन्होंने इधर उधर आध्यात्मिक तत्वों को भी प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से एक बुद्धिमान वैद्य जो है जब बच्चे को कोई दवाई देता है तो यदि वो दवाई बहुत कड़वी होती है तो उसे शहद के साथ मिला के देता है, किसी मीठे वस्तु के साथ मिला के देता है ताकि बच्चा बड़े आनंद से उसको ले ले, इस प्रलोभन से कि यह मुझे शहद की का मिठास का स्वाद मिलेगा। तो उसी प्रकार से अनेक लोग जो हैं जिनको कहानियां सुनना पसंद है, जो आध्यात्मिक तत्वों से इतने आकर्षित नहीं होते हैं, कहानियां सुनने के नाम पर महाभारत को सुनेंगे और ऐसे सुनते सुनते कहीं इधर उधर से तत्व की बात भी जान लेंगे, ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे। और क्योंकि ये सारे कहानियां भगवान और उनके भक्तों से संबंधित हैं इसलिए उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे श्रवण करते रहने से रुचि बढ़ जाती है श्रवण के लिए। पहले पहले केवल कहानियां सुनने में रुचि लगती है, धीरे 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 रुचि सुदृढ़ होने पर, पक्की हो जाने पर फिर व्यक्ति और आगे बढ़ के और सुनना चाहता है, फिर तत्व ज्ञान भी सुनना चाहता है, फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना भी चाहता है। इस तरह से व्यास देव जी बहुत बुद्धिमान थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन दिनों में जो अल्प बुद्धि के लोग थे, मतलब जो वास्तव में इतने बड़े ज्ञानी नहीं थे, वो भी भगवद गीता को एक दो तीन घंटे में समझ लेते थे। परंतु आजकल प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग जीवन भर भी भगवद गीता को पढ़ने के बाद समझ नहीं पाते हैं। तो व्यास देव जी ने महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की थी उन व्यक्तियों के लिए जिनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी, जो शायद अन्य शास्त्रों में बताए हुए तत्व ज्ञान को सही तरह से नहीं समझ पाए। लेकिन आजकल भगवद गीता जैसे ग्रंथों को भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो अन्य ग्रंथों की बात तो दूर है, हम समझ सकते हैं कि आज की परिस्थिति कितनी है। इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस युग में महाभारत जैसे ग्रंथों का महत्व बहुत अधिक है, हमें इसे कम नहीं समझना चाहिए। और वैसे भी क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं, हम तो महाभारत जैसे ग्रंथों को ही कृष्णमय ही समझते हैं, शुरुआत से अंत तक कृष्ण ही कृष्ण देखते हैं हम सब। और हम सब के लिए महाभारत की जो कथाएं हैं वो भक्ति वर्धक और भक्ति पोषक होते हैं, क्योंकि इनका संबंध श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्तों से है। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, अमेरिका में जब मैं गए थे, प्रवचन में कह रहे थे कि ये महाभारत रामायण आदि पौराणिक कथाएं, इतने सारे कथाएं हैं वैदिक शास्त्रों में, यदि मुझे कोई सहायता मिलती तो आपके देश में इन कथाओं का बाढ़ मैं तैयार कर देता, फ्लड भर देता आपके देश को इन कहानियों से, ताकि जीवन भर के लिए कहानियां कथाएं रहें आपको पढ़ने के लिए। वास्तव में सत्य है ये, इतने सारे शास्त्र हैं, इतनी सुंदर सुंदर कहानियां हैं, कथाएं हैं भगवान और उनके भक्तों के संबंध में। बस हमारे एक जीवन कम पड़ जाएगा इन सारी कथाओं को सुनते सुनते। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग भी सब इनको जानें, और ये सब हमारे प्राथमिक ग्रंथ हैं, बचपन से हम सुनते आए हैं। तो यदि महाभारत रामायण जैसे कथाओं को हम नहीं जानेंगे तो फिर हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे श्रीमद् भागवत तो पढ़ते हैं, और अवश्य हमारे लिए मुख्य ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में बहुत गंभीर होते हैं और आगे बढ़ के आध्यात्मिक तत्वों को समझना चाहते हैं, वो श्रीमद् भागवत तक आते हैं, श्रीमद् भागवत में रुचि रखते हैं। परंतु साथ साथ में, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी महाभारत से संबंधित बहुत सारी लीलाएं हैं, इसलिए यदि महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका को और महाभारत की लीलाओं को हम भलीभांति समझ लें तो हमारे श्रीमद् भागवत के पाठ पठन के लिए भी बहुत हमें लाभ मिल सकता है। वैसे महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या सबसे महत्वपूर्ण पात्र जो है वो श्री कृष्ण है। यद्यपि अनेक टीकाकार ऐसे हैं जो अपने मनमाने ढंग से कुछ कहते हैं, एक व्यक्ति ने ग्रंथ लिखा है, एक नाटक लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में महाभारत में जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है या व्यक्ति है वो है कर्ण। बस अपने मन में विचार है, कर्ण के बारे में सारे महाभारत लिख दी कि कर्ण है, उनके प्रति अन्याय हुआ और बहुत सी चीजें लिखी। कोई कहता है कि मेरी राय में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ये है वो है, परंतु व्यासदेव जी की क्या इच्छा थी? व्यासदेव जी तो रचेता है, व्यासदेव जी के की राय तो स्पष्ट है कि शुरू से अंत तक मुख्य व्यक्ति है महाभारत में तो वो है केवल श्री कृष्ण। परंतु बात यह है कि महाभारत में जितने भी व्यक्ति हैं, पात्र हैं, वो भी इतने शक्तिशाली हैं, तेजस्वी हैं, बुद्धिमान हैं, समर्थ हैं, जैसे कि भीष्म देव, कर्ण, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन इत्यादि, ऐसे एक से बढ़कर एक व्यक्तियों का वर्णन है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है, जो परंपरा में ज्ञान जिसने स्वीकार नहीं किया है, वो इन अन्य पात्रों में उलझ जाएगा। अरे वाह, कर्ण की क्या क्या चरित्र है, अरे इनका चरित्र देखो, उनका चरित्र देखो, तो कृष्ण को भूल जाते हैं। परंतु जब हम श्रीमद् भागवत के दृष्टिकोण से देखते हैं महाभारत को, तब कृष्णमय सब कुछ प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवत की ये विशेषता है, श्रीमद् भागवत ये एक ऐनक है, चश्मा है। जैसे हम लाल चश्मे को पहनते हैं तो सब कुछ लाल देखते हैं, हरे रंग के चश्मे को पहनते हैं सब कुछ हरा दिखाई पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा ऐनक है जो सही ऐनक है, जो हमें सही दृष्टि प्रदान करती है, वो कृष्णमय ऐनक है। जैसा है वैसे सत्य, वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोनमूलनम। तो वास्तवमत्र वस्तु वाला ये ऐनक है श्रीमद् भागवत, जिसमें कि हम भली भांति अन्य शास्त्रों को भी समझ सकते हैं कि वास्तव में महाभारत है क्या, ये अन्य पुराण है क्या, ये उपनिषद है क्या, ये चार वेद हैं क्या। चार ये श्रीमद् भागवत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर हम सब कुछ ठीक ठाक समझ पाएंगे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि महाभारत में न केवल एक बार, न केवल सैकड़ों बार, परंतु हजारों हजारों बार शुरू में, शुरुआत में, बीच में, अंत में, सब जगह व्यास देव जी घोषित करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ही सबसे प्रधान है। तो संकीर्तन हो जाए तो हम पढ़ते हैं। महाभारत के सार की बात कर रहे हैं तो भगवान ने व्यवस्था कर दी, सार आगे हमारे सामने। तो आश्चर्य की बात यह है कि यद्यपि सैकड़ों सैकड़ों बार महाभारत में इतनी बार उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परम सत्य है, फिर भी लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। बड़े अचरज की बात है। यदि कहीं एक बार इधर उधर कहा गया होता दूसरी बात होती, कोई कहता भाई एक ही बार तो कहा है, और यदि कहीं वो बात छुपी हुई होती किसी एक कोने में, वो भी समझ सकते थे। परंतु भगवान कृष्ण के बारे में तो ऐसा नहीं है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका है, स्पष्ट कैसे भगवान के भगवत्ता का उल्लेख होता है अनेकों बार, और फिर भी यदि लोग नहीं समझ पा रहे हैं महाभारत को पढ़ने के बाद कि श्री कृष्ण परम सत्य है और उन्हीं की भक्ति हमें करनी चाहिए, तो इसके लिए उत्तर एक ही है, और वो है कि ये माया का खेल है, और माया की चंगुल में फंसने के कारण अब ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में महाभारत के सार जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। महाभारत की बात तो दूर है, जितने भी पुराण हैं, पुराणों की बात तो दूर है, जितने भी अन्य वैदिक शास्त्र भी हैं, उन सब में श्री कृष्ण का ही गुणगान किया जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए बताया गया है वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। जितने भी शास्त्र हैं वेदे रामायणे च एव, वेदों में, रामायण में, भारते च महाभारत में भी, पुराणों में भी, आदाव अंत अंताव च मध्ये च, शुरुआत में, बीच में, अंत में, हरि ही सर्वत्र गीयते, केवल भगवान श्री हरि या कृष्ण का ही गान है सब जगह। तो महाभारत में भी ऐसे है, शुरुआत से अंत तक कृष्ण ही कृष्ण का गुणगान है। जिस तरह से सौंदर्य देखने वाले के दृष्टि पर निर्भर होता है, तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण को महाभारत में समझने के लिए भी कृष्ण की दृष्टि, कृष्ण भक्ति की दृष्टि चाहिए, अन्यथा व्यक्ति तो और अनेक विषयों में उलझ जाएगा। इसलिए वास्तव में नारद मुनि श्रीमद् भागवत में व्यासदेव जी के पास आके कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने इतने सारे ग्रंथों की रचना की है, यहां तक कि महाभारत आदि और अन्य कितने पुराण आदि, धर्मशास्त्र आदि लिखे हैं, परंतु एक कमी है इनमें। कमी क्या है कि आपने इतना महत्व श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं को नहीं दिया है। यद्यपि श्री कृष्ण का उल्लेख तो पाया जाता है, परंतु श्री कृष्ण के साथ साथ इतने अन्य विषयों के बारे में भी आपने विस्तार में चर्चा की है कि पढ़ने वाले को साफ साफ स्पष्ट नहीं होता है कि कृष्ण ही एकमात्र विषय है, क्योंकि श्री कृष्ण ये जो विषय है ये अन्य विषयों के बीच में ढक जाते हैं। और आपने गलती ये की कि इन शास्त्रों में आपने श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु नहीं बनाया, तरह तरह के विषयों की चर्चा आपने कर ली, यहां तक कि आपने कर्मकांड के शास्त्रों का इतनी रचना कर ली, और धर्म के नाम पर आपने वास्तव में इंद्र तृप्ति को ही प्रोत्साहित किया है। तो काफी डांट लिया गुरु ने शिष्य को। इसलिए आपको चाहिए कि आप शुद्ध कृष्ण कथा अब करें, जिसमें कि कृष्ण और केवल कृष्ण रहेंगे, ताकि किसी व्यक्ति को पढ़ते समय कहीं संदेह न हो कि इस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति के सिवाय और कोई उद्देश्य नहीं है। इस ग्रंथ के केंद्र बिंदु को आप श्री कृष्ण बनाइए और कृष्ण के अतिरिक्त और किसी अन्य विषय की चर्चा आप मत कीजिए। आप जो असंतुष्टि का अनुभव कर रहे हो वो इसके कारण है कि आपने पर्याप्त मात्रा में श्री कृष्ण का वर्णन नहीं किया है। तो फिर आगे चल के व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर ली, और श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद फिर व्यासदेव जी पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। तो जब श्रीमद् भागवत को हम पढ़ते हैं तब महाभारत को समझना और भी रसमय हो जाता है। यदि भागवत को पढ़े बिना जाने बिना हम महाभारत पढ़ेंगे तो अन्य चीजों से आकर्षित हो जाएंगे, परंतु श्रीमद् भागवत पढ़ने के बाद फिर वो एक हंस की दृष्टि मिल जाती है। हंस वो होता है जो दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो भागवत के अनुयायी होते हैं, भक्त होते हैं, वो महाभारत या अन्य ग्रंथों को पढ़ के सार या निचोड़ जो होता है उसको स्वीकार करते हैं, और वो है श्री कृष्ण। इसलिए महाभारत जैसे ग्रंथों को भी वो कृष्ण में ही देखते हैं। वैसे जो महाभारत की रचना है वो ऐसे लोगों के लिए अधिकतर है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के पथ पे चल रहे होते हैं, और इसलिए ऐसे कभी कभी उनको भौतिक प्रलोभन भी दिए जाते हैं इधर उधर। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है हमें केवल पंचम पुरुषार्थ चाहिए, भक्ति चाहिए, हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं है। मोक्ष भी नहीं चाहिए हमें, हमें केवल भगवान की भक्ति चाहिए। तो श्रीमद् भागवत को पढ़ने के बाद हम अन्य शास्त्रों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, हमारी दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए, यह हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और श्रीमद् भागवत को समझने के लिए हमें चैतन्य चरितामृत चाहिए। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के बिना हम राधा कृष्ण और वृंदावन को नहीं समझ सकते हैं, और श्रीमद् भागवत का तो मूल विषय ही है राधा कृष्ण और वृंदावन। और जब इनको हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो फिर महाभारत पढ़ने के बाद हमारे लिए, हमारे भक्ति के लिए बहुत लाभदायक होगा। और फिर आगे चल के आने वाले दिनों में हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे श्रीमद् भागवत और महाभारत की लीलाओं में संबंध है। श्रीमद् भागवत के दृष्टिकोण से जब महाभारत पढ़ते हैं तो जितने भी महाभारत में कृष्ण लीला के संबंध में तथा कथित विरोधाभास हैं या गलत धारणाएं हैं उनका समन्वय किया जा सकता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि सनातन शिक्षा के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अनेक विषयों के ऊपर उपदेश करते हैं, और यह भी उपदेश करते हैं कि महाभारत में और अन्य ग्रंथों में भगवान कृष्ण की ऐसी लीलाओं के बारे में जो गलत फहमियां हैं और विरोधाभास लोगों के मन में है उनको कैसे दूर किया जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसके ऊपर व्याख्या की सनातन गोस्वामी को, और प्रभुपाद जी उसके ऊपर टीका भी लिखते हैं जिसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे जैसे जैसे हम लीलाओं का वर्णन करते जाएंगे। तो कल हम यहां से प्रारंभ करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का महाभारत में उल्लेख कहां से शुरू होता है, श्री कृष्ण लीला महाभारत में कहां से शुरू होती है, और श्री कृष्ण पांडवों के बीच में पहले से संबंध कैसे बने रहे, कब वो पहले मिले, और घटनाएं कौन सी हुई, इन सारी घटनाओं से हम शुरू करके आने वाले 3 दिनों में हम प्रयास करेंगे। वैसे महाभारत तो इतना विशाल ग्रंथ है और श्री कृष्ण की भूमिका भी का वर्णन भी इतने विस्तार में है कि 3 दिन तो काफी नहीं है, परंतु 3 दिन में जितना भी संभव हो हम करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 3-4 मिनट बचे हैं, यदि आप में से किसी को 1 या 2 प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। महाभारत कौन सी पढ़नी चाहिए हमें? वैसे व्यासदेव जी की ही पढ़नी चाहिए, और हमारे इस्कॉन भक्तों ने भी काफी विस्तार में महाभारत भी लिखा। अंग्रेजी में तो उपलब्ध है, अब हिंदी में है या नहीं मुझे पता नहीं, उसका अनुवाद हुआ है या नहीं, रामायण का तो हुआ है, महाभारत का अनुवाद हुआ है या नहीं हिंदी में हमें पता नहीं, आप पूछताछ कर सकते हैं जी। वैसे ठीक है, आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हर बार हमने गीता प्रेस की पढ़ी नहीं है तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि वैसे कहीं अनुवाद में कहीं तात्पर्य में टीका के कुछ कर रहे हो तो उसमें कोई इधर उधर के दार्शनिक तत्वों में कोई गलती न हो, हम कह नहीं सकते हैं। परंतु यदि केवल कथा के रूप में पढ़नी है तो मेरे ख्याल में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। हाँ, कोई भी इस्कॉन भक्त जो है उनकी रचना को आप ले सकते हैं, वो हम प्रामाणिक समझ सकते हैं उसको, क्षत्रिय वंशी मानते हैं। हाँ, श्री कृष्ण परिवार को वैश्य परिवार मानते हैं। वैसे श्री कृष्ण तो न वैश्य है न शूद्र है न कुछ है, वो तो भगवान है, वो तो लीला करते हैं, और लीला भी करते हुए केवल वृंदावन में वैश्य परिवार में लीला करते हैं, लेकिन जब मथुरा और द्वारका जाते हैं तो वो भी क्षत्रिय लीला करते हैं। द्वारका में तो वो द्वारकाधीश हैं, द्वारका में तो वो ग्वाल बाल नहीं है, वो तो ग्वाले नहीं है, राजा हैं, वो राजकुमार हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कथा आज यही विराम रखते हैं, कल सायंकाल फिर से 5 बजे हम मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, गौर प्रेमानंदे।